ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः सम्यक् दर्शन चरण गुण तीर्थंकर भगवान की वाणी में चारों ही अनुयोगों के द्वारा जीवों को जो उपदेश दिया गया है उसमें से अभी हम करणानुयोग के आधार से कर्मों का कुछ स्वरूप देख रहे हैं, जीवों के भी परिणाम हम उसी में देखेंगे। इसको कहते हैं 20 प्ररूपणा। देखो, आचार्यों ने अनेक ग्रंथों की रचना की है जो आगम के अनुसार ने जैसे दिव्य ध्वनि थी उसके अनुसार जो चला आया है मार्ग। तो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हुए। सिद्धांत क्यों कहते हैं? जैसे चक्रवर्ती षटखंडागम यानी षटखंड का अधिपति होता है, वैसे अपना ओरिजिनल एक शास्त्र षटखंडागम जो भूतबली और पुष्पदंत आचार्यों ने लिखा था और उनके गुरु जो है धरसेन आचार्य ने उनको उपदेश दिया था। उनको पता था या उनको ऐसा एहसास हो गया कि दिन प्रतिदिन अभी ये जो कर्णानुयोग संबंधी ज्ञान है उसका ह्रास हो रहा है, तो इसको लिखित रूप से लिखेंगे तो ये कुछ काल तक रह जाएगा। उस षटखंडागम पर अनेक आचार्यों ने टीकाएं लिखी है, उसमें से एक है गुम्मटसार, दूसरे धवला है, जय धवला है, महाधवला है, महाबंधा आदि अनेक कषाय प्रावृत, चूर्णी सूत्र, बहुत सारे ग्रंथ है। तो ये जो नेमिचंद्र आचार्य हो गए 1000 वर्ष पहले, उन्होंने गोमटसार नाम की टीका रच दी है और उसके आधार से उसकी जो टीका है, गोमटसार की भी टीका लिखी है, उसको सरल करके समझाया है, उसको यहाँ ढूंढारी भाषा में पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक ग्रंथ लिखे है। जीव के जो 20 प्ररूपणा है उसको जीव कांड कहते हैं। कर्म की पूरी थियोरी बताई है उसको कहते हैं कर्मकांड। जीव को सम्यक दर्शन होता है, उपशम सम्यक, क्षायिक सम्यक, क्षायिक चारित्र आदि, उसमें कर्मों की और जीवों के परिणामों की बहुत विस्तार से चर्चा है, उसका नाम है लब्धिसार और क्षपणासार। दूसरा भी त्रिलोकसार उन्होंने रचा है जिसमें पूरे त्रिलोक की रचना का वर्णन किया है। उसमें सूक्ष्म गणित तो है ही है, पूरी जियोग्राफी जिसको हम कहेंगे भूगोल, वो उसमें सब बता दिया है। यहां तो हम जो गोमट सार जो है समय ज्ञान चंद्रिका जिसका टीका है उसके आधार से, जीव कांड के आधार से जीव की जो 20 प्ररूपणा है, प्ररूपणा का अर्थ होता है विशेष व्याख्यान, जीवों का वर्णन। जीव द्रव्य तो भिन्न है और पुद्गल द्रव्य भिन्न है, ये तो हम सब जानते हैं, फिर भी उन दोनों का इस तरह से संयोग हो रहा है कि जीव और कर्म तो बंधे है ही है और कर्म के फलस्वरूप उसका निमित्त के कारण जीव के शरीर का भी ग्रहण होता है, शरीर की भी रचना होती है। तो यहां अकेला प्योर जीव द्रव्य नहीं है परंतु उसके साथ साथ कर्म भी है, उसका शरीर भी है। तो जानने वाला तो जीव है, परंतु कर्म और शरीर के कारण, और दिखता तो शरीर है। कर्म की भी जो कुछ उसके फल स्वरूप बातें हैं, उसका फल तो दिखाई देता है, कर्म नहीं दिखाई देता, ना ही जीव स्वयं को देख सकता है। तो प्राप्त शरीर और जो अन्य जो कोई बातें बनती है, उसका तो उसको एहसास होता है, इसलिए जो शरीर है वही मैं हूं ऐसी उसकी मान्यता बनती है। शरीर मैं हूं ये बात उसको सिखाने की जरूरत कभी नहीं पड़ी अनादि से। जिस पर्याय में गया है उस पर्याय में यही मैं हूं, अभी हम मनुष्य हुए तो यही मैं हूं जो दिख रहा है, मैं काला, मैं गोरा, मैं ऊंचा, मैं ठींगना, मैं जाड़ा, मैं बारीक, तो ऐसे ही उसको सहज बुद्धि हुई, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। परंतु जब वह जीव समझेगा अपना स्वरूप, उसके लिए सच्चे देव का जो उपदेश है जो हमें अभी तक प्राप्त हुआ है, वो भले तीर्थंकरों के मुंह से सुने, अन्य केवली के मुंह से सुने, आचार्य के मुंह से सुने, उपाध्याय से या साधु के या पांचवे या चौथे उन्नस्थानवर्ती के मुंह से सुने, ज्ञानी के द्वारा जब इस जीव को उपदेश की प्राप्ति होती है, उसका अपना स्वरूप समझाया जाता है, तब ये जो संगी पंचेंद्रिय जीव है मन वाले, सुनते हैं, समझते हैं, जिनके मन होता है उनके कुछ याद भी रह जाता है, फिर उस पर विचार भी चलते हैं, और जब वे ऐसी ही वस्तु स्थिति है ऐसे अपने बुद्धि द्वारा निर्णय करके एक्सेप्ट करते हैं, उस आत्मा का स्वरूप जानकर अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं, तब उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जीव दिखाई नहीं देता, वो पुद्गल नहीं है, तो उसको ढूंढने के लिए प्राथमिक अवस्था में उसको शरीर के संयोगों के द्वारा समझाया जाता है कि यहां जीव रहते हैं, इसीलिए ये सारी 20 प्ररूपणाएं हम देख रहे हैं। 20 प्ररूपणाओं में हमने सबसे पहले जीव समास देखा था। जीव समास में हमने देखे थे एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव होते हैं। एकेंद्रिय में दो प्रकार है, सूक्ष्म और बादल। पंचेंद्रिय में भी दो प्रकार है, संगी और असंगी। तो ऐसे एकेंद्रिय के दो पंचेंद्रिय पर दो एक्स्ट्रा हुए, और एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, और वो दो एक्स्ट्रा, ऐसे सात हुए। सातों में ही पर्याप्त भी जीव होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं, तो ये सब मिलकर 14 भेद पाए जाते हैं। इन 14 अलग अलग भेदों में, इन पर्यायों में, इन अलग अलग जगह में सभी संसारी जीव पाए जाते हैं। इन सभी अलग अलग पर्यायों में हम भी अनंत बार भव भ्रमण करते करते आज मनुष्य पर्याय में आए हैं। तो ये सारा हमने जीव समास का वर्णन देखा था, उसको जानने से क्या लाभ है उसकी भी बात हमने देखी थी। अब ये पर्याप्त अपर्याप्त क्या है वो भी देख रहे थे हम, थोड़ा विषय अपना चला था। तो ये पर्याप्ति क्या होती है, तो शक्ति कोई उत्पन्न होती है, जीव मरकर अन्य भव में चला जाता है। पहले भव का उसका शरीर तो वहीं छूट जाता है, जिसको हम औदारी या वैकरिक शरीर कहते हैं, फिर मरकर अन्य चल जाता है, तो उसके कर्मों से बंधी हुई अवस्था में चला जाता है। यहां से दूसरा कुछ नहीं ले जाता, कारमान शरीर और तेजस शरीर जीव के साथ चला जाता है अन्य भव में। क्यों? शरीर के परमाणु तो उसका कॉन्ट्रैक्ट तो एक भव के लिए होता है, जिसको स्थिति बंध कहते हैं ना, कर्मों में जैसे स्थिति बंध होता है, वैसे ही जीव जो शरीर के परमाणु ग्रहण करता है वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए ग्रहण करता है। जितना आयु का बंध है उसके सत्ता में, उतने काल के ही शरीर के परमाणुओं की स्थिति होती है, उससे दूर नहीं, उससे लंबी नहीं। तो ये एक भोग के लिए उसने ये शरीर के परमाणु ग्रहण किए, परंतु कर्म के परमाणु और तेजस शरीर के परमाणु तो अनेक भवों तक उसे चलते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति तो अनेक सागरों की होती है। तो जीव मरकर जाता है तो उसके साथ उसका तेजस शरीर और कारमान शरीर बंधी हुई अवस्था में चला जाता है, जो दिखाई नहीं देता। कि हम देखते हैं ना, जीव मरकर गया, यदि मरकर जाता तो दिखाई नहीं देता, जीव स्वयं अरूपी है, और कारमान शरीर और तेजस शरीर उसका सूक्ष्म परिणमन है, इसलिए वो दिखाई नहीं देते। अब वहां जाने पर क्या होता है, तो वहां तो जीव गया है, तो विशिष्ट कर्मों के उदय में वहां शरीर के परमाणु का ग्रहण फिर शुरू करता है, नए शरीर के परमाणु। अब ये जो नए शरीर के परमाणु ग्रहण करता है, उनको शरीर रूप बनाने के लिए। परमाणु स्वयं शरीर रूप परिणमित होते हैं, जीव का उसमें निमित्त होता है। तो उसमें निमित्त रूप से ऐसी कोई जो विशिष्ट शक्तियां वहां उत्पन्न होती है परिणमाने की, ये सारी निमित्त की भाषा है वो। हाँ, तो वो जो शक्तियां उत्पन्न होती है, डेवलप होती है, उसके लिए एक छोटा अंतर्मूर्त लगता है। शक्तियों की पूर्णता होना, इसको कहेंगे पर्याप्ति। तो ये छोटे अंतर्मूर्त में जब पर्याप्ति पूरी होती है, तो ये हर समय शरीर के परमाणु ग्रहण करना और शरीर रूप से परिणमाना, ये कार्य मरण तक चलता रहता है। परंतु उसके जो कारण रूप जो पर्याप्ति है, वो वहां जाने पर जन्म लेने के समय से ही शुरू हो जाती है। ये पर्याप्तियों के हमने नाम देखे थे, 6 नाम देखे थे। किसको याद है जरा देखें तो सही। हाँ, कोई जो कोई वॉलंटियर जो कोई बताना चाहता है हम सुनेंगे। हाँ बोलिए। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और बहुत अच्छा। आज जेंट्स पुरुष आगे है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये नाम तो हम पहली बार सुनते हैं ना, और फिर ध्यान में रखने के लिए भी अटपटे हैं। फिर भी यदि हमें ध्यान रहे तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। तो यह आहार पर्याप्ति ने क्या, ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि जो परमाणु ग्रहण करता है उसको रस रूप और खल रूप परिणमाता है। शरीर पर्याप्ति में ऐसी शक्ति होती है कि जो खल रूप बनाया उसमें से सॉलिड जो अवयव होते हैं, और रस में से द्रव रूप अवयव होते हैं, जैसे लिम्फ है, रुधिर है, वीर है इत्यादि। उसके बाद शरीर पर्याप्ति होगी इंद्रिय पर्याप्ति, जहां द्रव्योंद्रियों की रचना होती है वहीं से आत्मा विशिष्ट विषयों को जानने का कार्य करेगा। जैसे आत्मा में 5 ही इंद्रियों के द्वारा जानने की शक्ति तो उत्पन्न हुई, क्योंकि उसका कर्मों का क्षोभ वहां उतना है, उसकी योग्यता उतनी है। जैसे हम संगी पंचेंद्रिय है, हमारे सभी आत्म प्रदेशों में, क्योंकि आत्मा को अलग अलग टुकड़ों से बना नहीं है, वो एक अखंड वस्तु है। तो संपूर्ण आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने की शक्ति है कि नहीं अभी? परंतु वर्ण को जानने की शक्ति है तो कहां से जान रहा है? तो यह चक्षु इंद्रियों के द्वारा, उस माध्यम से। यहां जो आत्म प्रदेश है उनमें जानने की शक्ति है, परंतु यहां से वो देखने का कार्य नहीं करेंगे, सुनने का कार्य नहीं करेंगे, स्पर्श का कार्य करेंगे। तो अपनी अपनी विशिष्ट जगह से अपने अपने विषय को जानेंगे। शक्ति होने पर भी उपयोग रूप जो कार्य है वो वहीं से होता है। ये हो गई इंद्रिय पर्याप्ति। श्वासोश्वास पर्याप्ति किसको कहना? तो श्वासोश्वास का जो कार्य चलेगा, वो श्वासोश्वास करने रूप जो आत्मा की शक्ति है, उस शक्ति को यहां श्वासोश्वास पर्याप्ति कहा है। अब हम शक्ति की बात कर रहे हैं, आगे जब प्राण वाला प्रकरण आएगा उसमें श्वासोश्वास नाम के प्राण की भी बात करेंगे। अभी तो हम बस पर्याप्ति की चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं 5वीं पर्याप्ति का नाम क्या है बेन? भाषा पर्याप्ति। भाषा, हम आप जो बोल रहे हैं, बोल रहे ने आत्मा का कुछ प्रयत्न है उसमें, जैसे उसका वचन योग है, परंतु वहां ऐसी कोई निमित्त बनता है कि भाषा वर्गणा विशिष्ट शब्द रूप से परिणमित होते हैं। तो ये जो शक्ति है जीव में, वो द्विंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक होती है ना? तो उसको क्या कहेंगे? भाषा पर्याप्ति, शक्ति की उत्पत्ति। भाषा बोलने का कार्य तो पर्याप्ति के बाद उसको चलेगा, और अंतिम जो है मन पर्याप्ति। तो ये मन पर्याप्ति जो है, उसमें जो द्रव्य मन की रचना तो होती है, जो आहार वर्गणा ली है उससे द्रव्यमन भी बनता है, परंतु वो द्रव्यमन के द्वारा वहां विचार करने की शक्ति, स्मरण रखने की शक्ति, ये जो शक्ति की पूर्णता होती है उसको कहेंगे मन पर्याप्ति। देखो, जो जो आजकल ये कंप्यूटर द्वारा, टेक्निक के द्वारा हम जो कुछ एडवांस इतना हो गया है, वो उससे जो कर सकते वो सारा मन के द्वारा हो सकता है। मन में इतनी शक्ति है, और पहले के जमाने में हम देखते भी थे कि इतनी बुद्धि भी थी कि इतना सारा याद रखे, इतना सारा ग्रहण करे। हमने देखा है गणधर ने तो 12 अंगों की रचना अंतर्मुहूर्त में कर दी। तो 12 अंगों का अगर हम नाम और उसके विषय अगर भी सुनेंगे तो भी हमें ऐसा नहीं, नहीं बंद करो, हम मानते हैं कि आपके श्रुत ज्ञान इतना बड़ा है, ख्याल है ना। तो उसके नाम और विषय भी हमें हमारे से नहीं जाने जाते हैं, तो उन्होंने उसकी रचना कब की होगी, कैसे की होगी और अंतर्मुहूर्त में कैसे की होगी। आपने शायद सुना होगा 12 अंगों में सबसे छोटा पहला आचार अंग है और उसमें 18,000 पद है। ये पद क्या होते हैं वो भी सुनो। पद किसको कहते हैं? अक्षरों के समूह को पद कहते हैं, जिसको हम वर्ण कहते हैं। हमारे अभी कोई जो है, राम ने आम खाया, 3 शब्द हुए ना, राम एक शब्द हुआ, आम एक शब्द हुआ, खाया एक शब्द हुआ, इसको हम पद कहेंगे। ये हमारे अर्थ पद, लौकिक पद हो गए। तो उसमें इस शब्द सुनकर हमें कुछ न कुछ अर्थ भाषित होता। हम एक दूसरे से जो कॉन्वर्सेशन करते हैं, जो कुछ बताना चाहते हैं, इन शब्दों द्वारा हम बताते हैं। कुछ भी जो कोई है, मैं सुबह ही उठे, मैंने ऐसा किया, मैंने पूजा की, मैंने स्वाध्याय किया, ये हम एक दूसरे को अर्थ समझा सकते हैं, इसको कहेंगे अर्थ पद। दूसरा होता है प्रमाण पद। संस्कृत के जो श्लोक है या कोई भी भाषा के जो छंद होते हैं तो उसमें विशिष्ट प्रमाण में होते हैं। जैसे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते, कितने 8-8 का हुआ, कोई भी ले लो। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास, नमः समय साराय 8 स्वानुभूत्या चकासते, फिर 8, इस तरह से 8, 8, 8 और 8, ये 32 का हुआ, इसको कहेंगे प्रमाण। जैसे अलग अलग छंद होते हैं, मंदाक्रांता है, शार्दूल विक्रीडित है, त्राटक है, जो कुछ उसके अपना अपना निश्चित प्रमाण होता है, इसको कहते हैं प्रमाण पद। परंतु जिनागम की जो रचना हुई है उसको कहते हैं मध्यम पद। तो ये पद क्या होते हैं? तो पद में हम कहेंगे वहां अक्षरों की संख्या कैसे गिननी है, तो कहते हैं वहां हम अपुनरुक्त अक्षरों की संख्या गिनते हैं। ये अपुनरुक्त क्या होता है कि जो अक्षर एक बार आया है, दोबारा आया तो भी उसको एक बार ही गिनना। जैसे हम हिंदी कोई पुस्तक है उसमें है एक बार आया ना, तो उसको हम एक बार गिनेंगे। फिर हजार बार भी है आया तो हम उसको एक बार गिनेंगे, क्योंकि हमने एक बार उसको गिन लिया, इसको कहते हैं अपुनरुक्त अक्षर। ऐसे जो स्वर और व्यंजन है, 64 टोटल होते हैं, उसमें सिंगल कहो या जोड़ाक्षर कहो या जिस किसी रूप में उन अक्षरों की जो गिनती होती है उसको कहेंगे हम अपुनरुक्त अक्षर। जैसे कोई अंग्रेजी नॉवेल आपने पढ़ी, इतनी बड़ी अभी कौन सी आई ना, हैरी पॉटर, तो उसमें कितने लेटर्स हैं, अपुनरुक्त अक्षर कितने हैं, 26 कितने होते हैं, हाँ एबीसीडी कितने होते हैं, हाँ गिनो गिनो लता बेन गिन के बताएंगे, 26 होते हैं, हाँ अपुनरुक्त 26 ही होते हैं। अभी जिनागम के पदों की बात देखने हैं, 1634,83,07,888 इतने अपुनरुक्त अक्षर एक पद में होते हैं, ऐसे 18,000 पदों का एक छोटे में छोटा आचार अंग होता है। सभी 12 अंगों की अगर रचना 112 करोड़ और बहुत बड़ी संख्या वो इतने होते हैं। तो ये पदों का प्रमाण कितना होगा, रोग ओरिजिनल जो जिनागम है वो कितना बड़ा होगा, उसमें से अभी रहते 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 बहुत अल्प रह गया है। और आज जितने करणानियोग के ग्रंथ है उसको भी कोई नहीं जानता, कितने सारे ना, त्रिलोय पन्नति है, त्रिलोक पन्नति है, महाबंध है, कषाय पावड़ है, चुन्नी सुख रहे, गोमण सार है, और उसका अर्थ भी नहीं समझता है, निकाल के खोलते हैं एक हाथ दो दो चार लाइन पढ़ते हैं, ये अपने बस की बात नहीं, हम रख देते हैं। उसकी तो क्या बात है, आसान आसान ऐसे जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है रत्नकरण शावकाचार्य, निकाल के बैठते हैं और फिर थोड़ा पढ़ते हैं, चलो ये कुछ नहीं समझता, क्या करे, अभी व्रत लिया है तो एक पन्ना तो پڑھنا ہے. تو سمجھے بنا پڑھتے ہیں، سمجھے بنا ہی ہمارا سب کچھ کاریہ چلتا ہے. یہ سمجھے بنا کرتا ہے، اس کا ارتھ کیا ہے؟ دیکھو یہ ابھی ہم دویندری کی بات کی نا، ابھی ہم پرانوں میں دیکھنے والے ہیں. یہ بولنے کی بولنا جو ہے وچن ہے، کتنے اندری والوں کو ہوتا ہے بہن؟ کہاں سے؟ ہاں قلم میں دویندری، تیندری، چتریندری اور پنچیندری پرانی بولتے ہیں. اس میں سے کرنیندری کس کو ہے؟ ہاں بہن، کرنیندری. ہاں دیکھو پانچ اندری ہیں، سپرشن اندری، رسنا اندری، گھران اندری، چکشو اندری، کرنیندری، شروتر اندری. تو چار اندری تک کے جیووں کو کرنیندری نہیں ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں، سنتے نہیں، ہے نا؟ اور بولنا سننا دونوں کون کرتا ہے؟ پنچیندری. ہم کیا کرتے ہیں؟ مندر میں آ کر بھگوان کی ستوتی کرتے ہیں، بھگوان کی ستوتی گا گا کر کرتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ تک کرتے ہیں، بھگوان کو سناتے ہیں، پرنتو بھگوان کے کیا بتایا ہے وہ نہیں سنتے. تو ہماری پوزیشن کیسی ہوئی کہ ہم بولتے ہیں سنتے نہیں، بھگوان کو سناتے ہیں، بھگوان کی ستوتی بھگوان کو سناتے ہیں. پر بھگوان کی ستوتی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بھگوان نے جو اپدیش دیا ہے نا، وہ اپدیش سن کر ہمیں اپنی جو مہانتا بھاسک ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ایسا سہج بھاو آتا ہے کہ بھگوان کی ستوتی کریں. کہ ہے بھگوان، آپ یدی ہمیں یہ سوروپ نہیں بتاتے تو ہم کہاں جاتے اور کہاں یہ نرک نگود آدی میں بھٹکتے رہتے. ہم نے ستوتی تو کر دی، پرنتو بھگوان نے کیا بتایا اس کو سنا نہیں، تو ہم بھی دویندری سے جیسے ہو گئے، پنچیندری ہوتے ہوئے بھی. تو کان یعنی کرنیندری مل کر بھی جو بھگوان کی وانی جن وانی کو نہیں سنتا ہے، وہ کان ہے کہ نہیں برابر؟ پھر ایسی پریائے پراپت ہوگی کہ جہاں نہ کرنیندری ہوگا نہ کچھ انیہ بھی اندری ہوگی، ایک اندری میں جا کر جنم لینا پڑے گا. ہم کیا یہاں دیکھ رہے تھے کہ جو ہم نے پریاپتیوں کی کل بات دیکھی تھی، پراڑوں کی باتیں تو ابھی، ہاں سور ونجن وہ ہم نے بتا دیا، یہ پرمان پد کیا ہوتا ہے. ہمیں تو جناگم کیا ہے اور کتنا گہن اور کتنی اس میں باتیں ہیں اس کی بات ہم دیکھ رہے ہیں. اتنا ہیوج ہے، پھر بھی ہمیں اس میں سے تھوڑا سا بھی گیات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کا ابھیاس نہیں کیا. ابھیاس کریں گے تو ضرور سمجھ میں آئے ایسی بات ہے، کیونکہ وہ نئے نئے سائنس جتنا ڈیولپ ہوتا ہے اس کو ہم اسٹڈی کرتے جاتے ہیں، ہماری سمجھ میں بھی آتا ہے. یدی ہم اس کا ابھیاس کریں گے تو اس کو بھی سمجھیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے. کسی بھی سننے والوں کو ایسا من میں بالکل نہیں لانا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت ہائی لیول کی ہے، مجھے نہیں سمجھتی، میں نہیں سنوں گا. بالکل سننا، کیوں؟ اس میں اپنا ہی کلیان ہے اور کسی کے لیے کرنا ہی نہیں ہے. انیہ باتیں تو ہم دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں، پرنتو یہ تو بالکل اپنے لیے ہی کرنے کی بات ہے. اور اس میں اپنا ہی انت بھو میں جو نہیں کاریہ کیا ہے وہ اس بھو میں مجھے کرنا ہے. کیا کہا؟ انت بھون سے جو متھیاتو چلا آ رہا ہے اس کو اس ایک بھو میں اتنا پرشارتھ کرنا ہے کہ وہ ہٹ کر ہم اپنے سوروپ کی پراپتی کریں. تو اس کے لیے ہمیں جو کچھ آوشک ہے، جیسا سوادھیائے آدی کرنا، تتو کا نرنے کرنا، وہ اسی بھو میں ہمیں کرنا ہے. یہ سوچ کر ہی ہم اس کا ابھیاس کریں گے. ابھی ہم آگے بڑھتے، پریاپتی کی بات ہم نے لی تھی. 131 میرے میں پرشت ہے، جہاں ہم نے 6 پریاپتیوں کی ڈیفینیشن پڑھی تھی کل. اس کے آگے یعنی آپ کا 129 یا 130 پرشت ہوگا شاید. دیکھو جہاں من پریاپتی کی پوری ہوئی ہے بات، ان سبھی پریاپتی کی شروعات ایک ہی سمے میں ہوتی ہے، پرنتو پورنتا کرم کرم سے ہوتی ہے. اس کو بھی ہم نے بورڈ پر دیکھا تھا کس طرح ہوتی ہے. 129 پرتیک پریاپتی کی پورنتا میں انترمورت کال لگتا ہے. پریاپتی کا ارتھ ہم نے دیکھا تھا شکتی، اور سبھی کو مل کر بھی ایک انترمورت کال لگتا ہے. دوسری شریر پریاپتی پورن ہونے سے پہلے اس جیو کو نروتی اپریاپت کہتے ہیں. یہ نام بھی ہم نے کل دیکھا تھا، پرنتو یہاں پڑھنے سے ہمیں خیال آتا ہے نروتی، यानी शरीर की रचना वहां चलती है, ऐसी शक्ति की पूर्णता होती है, उसको कहेंगे निर्वृत्ति। निर्वृत्ति यानी निष्पत्ति, निष्पत्ति यानी उत्पत्ति, रचना होना, तैयार होना। इसके पश्चात जीव पर्याप्त कहलाता है। इन जीवों के पर्याप्त नामक नाम कर्म का उदय रहता है। ये सारे पर्याप्त जीवों की बात हुई। संगी पंचेंद्रियों में छह पर्याप्ति होती है और वे निर्वृत्ति, वहां पर है आपके शब्द लिखा हुआ है, दोनों का समान अर्थ है। निष्पत्ति या निर्वृत्ति या रचना होना एक ही अर्थ है। अब हम लब्धि अपर्याप्तों के बारे में सुनेंगे, क्योंकि हमने तो बहुत बार सुना है कि ऐसे भी जीव है कि श्वास के 18वें भाग इतने काल में जन्म मरण करते हैं। तो श्वास का अर्थ होता है जो दो पल्स के बीच में जितना काल है उसको श्वास कहते हैं, और वो भी कौन से पल्स, वो निरोगी है, युवा है, हेल्दी है, तो उसका जो श्वासोश्वास चलती है, उसके जो पल्स रेट चलता है, बीटिंग चलता है, हार्ट बीट, तो दो बीट के बीच में जितना काल होगा उसको एक श्वास कहते हैं। तो उनको कहते हैं लब्धि अपर्याप्त जीव। तो लब्धि अपर्याप्त जीवों के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय रहता है। हम ऐसा लगता है कि क्या करे, विचारों का कर्म का उदय है, तो कर्म ने इन जीवों को घुमाया, कर्म ने इन जीवों को ऐसी ऐसी पर्याय में ले आए कर्म, परंतु कर्म कुछ नहीं करता है। जीव ने भूतकाल में ऐसे परिणाम किए हैं और उनके परिणाम के वश जीव ही अभी ऐसे पर्यायों में वहां जन्म लेता है, और जीव ही स्वयं और राग द्वेष करता है तो जीव ही और भविष्य में वैसे वैसे पर्याय प्राप्त करता है। ये कर्म तो इन बिटवीन वो दिखाने वाला है, ज्ञापक है, बताने वाला है, वो करने वाला कुछ है नहीं है। तो ये लब्धि अपर्याप्त जो है, अपर्याप्त जीवों में पर्याप्ति की संख्या पर्याप्त जीवन जितनी होने पर भी ये क्या कहते हैं। अभी हमने देखा था संगी पंचेंद्रियों में कितनी पर्याप्ति होती है बहन, छह पर्याप्त अभी हमने देखे ना, और असंगी पंचेंद्रियों में मन पर्याप्ति नहीं है तो पांच होती, चतुरिंद्रिय में भी पांच, त्रिइंद्रिय में भी पांच, द्विइंद्रिय में भी पांच, और एकेंद्रिय में चार। तो पर्याप्तों में इतनी होती है कि अपर्याप्तों में होती है। तो हमने देखा था पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो सभी पर्याप्ति एक साथ चलती है। यानी संगी पंचेंद्रिय जीवों में जो कोई अपर्याप्त जीव है उसके भी छह पर्याप्ति है, वो छह एक साथ शुरू होती है, बिगिनिंग हो जाती है, परंतु एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, जीव मर जाता। यानी पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो पर्याप्तियों की संख्या तो छह ही होगी। संगी पंचेंद्रियों में पर्याप्त की भी छह और अपर्याप्त की भी छह, असंगी वैसे लेकर नीचे द्विंद्रिय तक पर्याप्त की भी पांच और अपर्याप्तों की भी पांच, एकेंद्रियों में जो पर्याप्त एकेंद्रिय उनके भी चार और अपर्याप्तों के भी चार, इसको कहते हैं संख्या दोनों की समान है। अपर्याप्त एकेंद्रिय विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय का अर्थ याद है ना, हमने देखा था द्विंद्रिय त्रिंद्रिय और चतुरेंद्रिय को विकल इंद्रिय कहते, उनके सकल इंद्रिया नहीं है, सभी नहीं है, थोड़ी है, इसलिए विकलेंद्रिय कहते। तो उनमें चार पांच और छह पर्याप्ति का प्रारंभ तो होता है परंतु एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, जीव उसके पूर्व ही श्वास के 18वें भाग में मर जाता है, इसका अर्थ भी हमने देखा था। इसका तात्पर्य कि पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों में पर्याप्ति समान होती है, परंतु पर्याप्त जीवों में पर्याप्ति पूर्ण होती है जबकि अपर्याप्त जीवों में एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। अब ये कौन कौन से जीव पर्याप्त है और कौन से अपर्याप्त है, तो सभी देव, सभी नारकी, सभी भोग भूमि वाले जीव और जितने ये गर्भ में आने वाले सभी मनुष्य और तीर्थ, ये सभी पर्याप्त ही होते हैं। अब जो निर्वृत्ति अपर्याप्त है वो भी ऑन द वे है पर्याप्ति पूरी करने, वो नियम से करने वाले तो वो भी बाद में पर्याप्त होने ही वाले। अब नीचे का पैराग्राफ, ये सभी पर्याप्ति एक अंतर्मुहूर्त में पूर्ण हो जाती है और आयु के अंतिम समय तक ये पर्याप्त यानी शक्तियां कायम रहती। कैसी शक्तियां थी ये? जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करते उस करते हैं उसको शरीर रूप से वगैरह वगैरह परिणमान, तो ये तो शक्ति डेवलप हुई उसकी। अब उसका कार्य क्या होगा? शरीर को परिणमाना। हम भी हर समय शरीर के अनंत परमाणु लेते हैं और उसको शरीर रूप से उसकी रचना होती है। पुराने जो शरीर के परमाणु है उसमें से कितने निकल जाते हैं, ये साइंस में भी कहते ना, वो रीजनरेशन डीजनरेशन चलता है। हम कहते हैं नीचे से स्किन के बेजल लेयर से ऊपर ऊपर सेल ग्रो होता है, ऊपर जो होता है उसका वो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो निकल जाता है। इतना तो हम भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वहां भी नए अनंत परमाणु आते हैं, तो ये आते हैं तो उनके शरीर रूप से रचना होती रहती। कब तक? मरण के समय तक। तो शरीर मन भाषा श्वासोच्छ्वास आदि रूप परिणमाने का कार्य भी जिंदगी भर यानी आयु के अंत तक चलता ही रहता है। बेटियों, पर्याप्ति का वर्णन पढ़कर मैं जीव बड़ा शक्तिमान हूं, पुद्गलों को परिणमाने की देखो मेरे में ताकत है, इस तरह की भ्रांति मत करना। क्यों? देखो पर्याप्ति हुई ना, मैं क्या कर सकता हूं? ये परमाणु लेकर उसको शरीर रूप बना सकता हूं। देखो जीव में ताकत है कि नहीं बहन? तो शक्तिमान हुआ ना मैं? क्या कहते हैं श्रुति? जीव ने क्या किया पुद्गल में? कुछ नहीं किया, फिर भी हम क्या कहें? निमित्त के रूप से उसमें वहां है वो, और उसमें हम कहेंगे उसमें पर्याप्ति उत्पन्न हुई। ये कहने कथन की बात। पुद्गल परमाणु स्वयं की योग्यता से शरीर रूप होते हैं तब हम कहेंगे जीव में भी ऐसी वहां शक्ति है, ये उसका विभाव है। पुद्गलों को शरीर रूप परिणमाना ये अच्छी बात है कि बुरी बात है बहन? बाद में छोड़ना है तो पहले रचना क्यों करता है? देखो यानी शरीर की रचना करना और अन्य अन्य भव धारण करना, अन्य अन्य शरीर धारण करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम कहते हैं ना भगवान के सामने, जन्म जरा मृत्यु निवासनाय जलम निर्वपान, यानी मेरा भी हरण कर दो आप, वो कुछ नहीं करने वाले। कहने की पद्धति है, पूजा करने से हमारे जन्म हटने वाले नहीं है, परंतु जन्म और मरण से कैसा हटना ये मार्ग भगवान ने बताया है, इसलिए हम भगवान को भक्ति के आवेश में कह देते कि हमारा जन्म मरण का नाश कर दो। नाश करना है तो हम अपने से ही कर सकते हैं, भगवान का उपदेश सुनकर उस रूप परिणमने से, अन्यथा कोई अन्य मार्ग नहीं है कि भगवान हमारा कुछ भला कर दे। अरे वे तो जानन देखन वाले हैं ना, उनको अपना कार्य करे ना, हर समय अनंत सुख भोग रहे, हर समय अनंत ज्ञान कर रहे, ये सभी गुणों की पर्याय चल रही है उनका कार्य। वो किसी अन्य जीवों का कुछ इसका भला करो, उसको कुछ सुख दो, उसको परीक्षा में पास करो, उसके बच्चा नहीं उसको बच्चे देने का आशीर्वाद दे दो, किसी की शादी नहीं हुई उसको शादी का आशीर्वाद, ये थोड़ा ही उनका कार्य है। हमने भगवान को क्या बना दिया है? ऑनररी सुपर सर्वेंट बना दिया। क्यों? ऑनररी है वो। हम भगवान के सामने जाकर क्या बोलते हैं? हे भगवान मुझे पास कर दो, मेरे को बच्चा दे दो, जो कुछ है, जो जिसकी मांग है, या हमारा कोर्ट में केस है वो हमारे फेवर में कर दो, यदि हो जाएगा कार्य तो मैं आपको सोने का छत्र बनाऊंगा, या यहाँ संगमरमर की सब यहाँ बिछा दूंगा, वॉल बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा। कब मेरा कार्य होगा? तो भगवान से भी ऐसे डायरेक्ट है, यहाँ तो हमें बाकी सारा बुकिंग करवाना है तो एडवांस में करना है, इंडिया में जाना है या ट्रेन में जाना है कहीं, एडवांस बुकिंग करते कि नहीं करते? अरे इंडिया में तो दो दो तीन तीन महीने पहले एडवांस बुकिंग करना पड़ता है, तो पैसा हमें सेफली पहुंचाएंगे तो। यहां आप नहीं कहते हम जाते ना फ्लाइट में जाते हैं, हमें टाइम में पहुंचाएंगे तो, ऐसा नहीं कहते। फ्लाइट मिस हो जाएगी तो देर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो भगवान को क्या हम कहते? मेरा काम हो जाएगा तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, जैसे भगवान आपके वो चढ़ावे के लिए हम बैठे हैं। तो हमने उनको वीतराग माना कि नहीं माना? देखो वे तो वीतरागी है, भगवान के स्वरूप में कोई गड़बड़ नहीं है, वे तो वीतरागी सर्वज्ञ ही है और वे ही भगवान है, परंतु हमारी उनके संबंध में क्या मान्यता है? ये यहां पर हमने भगवान को भी हमने रागी बना दिया, यहां पर बनाया, भगवान रागी बिगी कुछ नहीं बनते, भगवान तो भगवान होते हैं, परंतु हमने यहां क्या माना है? अरे वो सबके करने वाले वो भगवान है, हमारी सारे बिगड़ गए वो सब बनाने वाले भगवान है, तो हम पूजा क्यों करनी भगवान की? नहीं, कुछ पुण्य होगा ना तो आपको कुछ मिलेगा, यानी लोभ के वश हम भगवान के सामने जाते हैं, तो भगवान कुछ नहीं करने वाला है, ये मूल में हम ये स्वीकार करते हैं। देखो यह क्या कहते, मैं जीव बड़ा शक्तिमान हूं, पुद्गलों को परिणामानी की देखो मेरे में ताकत है, इस तरह की भ्रांति मत करना, ये सारी भ्रांति है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र रूप से उस द्रव्य की अपनी स्वयं की योग्यता से उसी द्रव्य में होता है। देखो एक एक वाक्य ख्याल रहे, क्या कहते हैं, इस विश्व में द्रव्य कितने हैं? छह जाति अपेक्षा और संख्या की अपेक्षा कितने हैं? अनंत, अनंत द्रव्य, जीव ही अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत, उसमें से एक एक परमाणु को, एक एक जीव को, कोई भी द्रव्य है तो उसका जो परिणमन, परिणमन का अर्थ क्या है? पर्याय, अवस्था, उसकी दशा, वो जो हर समय होती है, तो प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र रूप से, ये दूसरा कोई आएगा मुझे पलटाएगा, निमित्त नहीं मिला तो मेरा कार्य नहीं हुआ, ऐसा नहीं, स्वतंत्र रूप से उस द्रव्य की अपनी स्वयं की योग्यता से, निमित्त आए इसलिए योग्यता पलटी की ये बात नहीं है, प्रत्येक द्रव्य में अनादि से अनंत काल तक की एक एक पर्याय, एक एक अवस्था की योग्यता उस द्रव्य में ही विद्यमान है, उसी को हम द्रव्य कहते हैं। ये हम अगर ऐसा द्रव्य देखते हैं, वर्तमान में ऐसा दिख रहा है आपको, परंतु उसको हम देखेंगे अनादि अनंत, उसकी पर्याय ऐसी है, तो एक 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 समय की पर्याय सुनिश्चित है, वो द्रव्य में उसके उस पर्याय रूप परिणमने की योग्यता अभी पड़ी है। हम वर्तमान में यहां है मनुष्य पर्याय में, तो हमारी केवल ज्ञान की पर्याय मान लेते यहां पर है, तो सुनिश्चित उसी समय में उत्पन्न होगी ही, हमारे में से उत्पन्न होगी, किस समय और उसके पूर्व की पर्याय वो भी सुनिश्चित है, ऐसा नहीं कि यहां केवल ज्ञान हो रहा है और उसके एक समय पूर्व हम मूवी देख रहे हैं, उस यहां केवल ज्ञान है तो उसके पूर्व दशा में मुनि दशा ही होगी, बारहवां गुणस्थान होगा, उसके पहले में दसवां गुणस्थान होगा, उसके पहले ऐसा क्रम से लेना, नहीं तो इस समय होने वाला है ना, तो चलो हम बाकी काम कर ले, जरा घर का काम निपट ले, तब तक केवल ज्ञान, ये ऐसा नहीं है, उसकी पूर्व पर्याय भी सुनिश्चित ही होती, पूरा मोक्ष मार्ग सुनिश्चित, तो ये पर्याय रूप होने की शक्ति हमारे में है और हम उस पर्याय रूप से परिणमते हैं। ये वाक्य फिर पढ़ना, देखो, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र रूप से उस द्रव्य की अपनी स्वयं की योग्यता से कहां होता है? उसी द्रव्य में होता है। ये उसी द्रव्य में होता है क्यों कहा? अब क्षेत्र कितना है पर्याय का क्षेत्र? आपने यहां देखा था सिद्धांत प्रवेशिका में, जितना बड़ा द्रव्य उतने बड़े उसके प्रत्येक गुण और उतने ही बड़ी उसकी प्रत्येक पर्याय, तो द्रव्य की जो कोई पर्याय होनी है वो द्रव्य में ही होगी, द्रव्य के बाहर नहीं होगी। जीव को केवल ज्ञान होगा, इतना बड़ा जीव द्रव्य है तो केवल ज्ञान कितना बड़ा होगा? इतना ही बड़ा। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उसका साइज कितना? 500 अंश। और भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, उनके उस पर्याय का साइज हम क्षेत्र देख रहे हैं कितना बड़ा? 7 हाथ। परंतु वो जानते कितने हैं? तो लोकालोक जानते हैं, परंतु अपना क्षेत्र छोड़कर बाहर नहीं गए, यहीं पर रहते हुए वो सबको जानते, दूसरे को जानने के लिए वहां दौड़ना नहीं पड़ता उनको, ये तो हमारी पराधीनता है कि हमें देखना है तो सामने होने चाहिए, हम उसके सामने हो गए तो ही दिखाई देगा, अभी ऊपर के फ्लोर में क्या चल रहा है यहां से नहीं दिखाई दे रहा। भगवान की कैसी बात है केवल ज्ञान की? अरे तीन काल तीन लोक के सबको सभी पर्याय एक साथ एक समय में युगपत जानते। युगपत का अर्थ समझते हैं भैया? राजेश भैया आपके यहाँ कितने टीवी चैनल चलते हैं एट ए टाइम? कुछ भी नंबर बता दो। हाँ, हाउ मेनी? 150। तो 150 टीवी चैनल्स चल रहे हैं, वो आपको अगर देखना है तो एक के पीछे देखते कि एट ए टाइम 150, आप यू कैन पुट ऑन 150 एक के बाद एक, और मान लेते उसमें कोई हमने एक लगाई सीरियल, मान लेते वो आधे घंटे की है, कोई भी ड्रामा हो कुछ भी हो, तो वो आधे घंटे की देखने के लिए कितना समय लगता है? आधा घंटा। अच्छा, हमें लगा जल्दी जल्दी हो जाता है वहां। तो ये आधे घंटे के देखने के लिए क्रम से आधे घंटे हम देखते हैं, और वो भी एट ए टाइम हमारा एक चैनल चलता है। और भगवान की क्या अनंत द्रव्यों के, अनंत गुणों की, अनंत पर्याय वर्तमान की भी और भूतकाल की, अनंत अनादि से और अनंत काल की भविष्य की एट अ टाइम देखते हैं, उनके चैनल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती, सब कुछ चल रहा है उनके ज्ञान में एट अ टाइम। आदिनाथ भगवान ने जाना था ये आप इस काल में इस पर्याय में यहां मौजूद हो गए, उस समय आप सबकी हमारी सबकी पर्याय कौन सी चल रही उनके ज्ञान में थी कि नहीं थी, और यहां बैठे प्रत्येक जीव कब कल केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला है वो भी उनके ज्ञान में। आदिनाथ ने भी जाना था, महावीर ने भी जाना है, इसी को कहते केवल ज्ञान एट ए टाइम। फिर भी ये जो पर्याय होने वाली है नॉट बिकॉज भगवान ने जानी इसलिए हमको करना पड़ेगा, ये हम अपने द्रव्य में से ये पर्याय उत्पन्न होने की ताकत हमारे में है, ऐसी ताकत प्रत्येक द्रव्य में है, पुद्गल में भी है। ये पुद्गल इस रूप से अभी विद्यमान है और यहां से यहां चल गया, मैंने उठाया तब उठा कि नहीं उठा, बोलो नहीं। सुष्मिता भी ना कहती, इसमें प्रत्येक समय में अपनी पर्याय पलटाने की ताकत है कि नहीं है। ये उंगली सीधी थी ये टेढ़ी हो गई, देखो मैंने की नहीं, देखो मैं चाहे जैसे कर सकती हूं, नहीं, क्योंकि हमें उसको देखने का नजरिया मालूम नहीं है। उस परमाणु में जो निज शक्ति है उसका पता ही नहीं हमें, हमें तो बाह्य की ओर जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वही दिखाई देते हैं, उसमें जो इंटरनल फोर्स है प्रत्येक द्रव्य का वो हमें दिखाई नहीं देता, और वो हमें आगम के द्वारा दिखाई देता है, इसको कहते हैं आगम चक्षु। आपने शायद त्रोचन सार किसी ने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि हम आप सब जो है इंद्रिय वाले जीव इंद्रिय चक्षु से देखते हैं, देव अवधि चक्षु से देखते हैं, और मुनिराज आगम चक्षु से देखते हैं। आगम के द्वारा जानने पर जितना केवल ज्ञानी जानते सब कुछ हम भी जान सकते, इसलिए हमें तो आगम से देखने पर ये बातों का पता चलता है और हमें वैसे देखना है। देखो क्या कहते हैं यहां पर, प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन स्वतंत्र रूप से उसी द्रव्य की अपनी स्वयं की योग्यता से उसी द्रव्य में होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने वाले, ये निमित्त क्या और नैमित्तिक क्या होता है हमने बहुत बार देखा है, जैसे घड़ा बना ये कार्य हुआ, कौन सा द्रव्य स्वयं उस रूप परिणमित हुआ है बोलो बे, माटी। माटी स्वयं स्वतंत्र रूप से अपनी स्वयं की योग्यता से घड़ा रूप परिणमित हुई है, उस समय वहां सामने कुम्हार है उसको हम निमित्त कहेंगे। कुम्हार के गधे को करेंगे कहेंगे कि नहीं कहेंगे, नहीं, उसका बच्चा खेल रहा है उसको नहीं कहेंगे, वो किसी वृक्ष के नीचे घड़ा बना रहा है वो वृक्ष को हम कहेंगे ना निमित्त है, निमित्त भी हम उसी को कहेंगे कि जो उसमें निमित्त रूप से है, जिसको अनुकूल होने का आरोप जिस पर आया है। हमें तो अनुकूल निमित्त किसको कहना ये भी पता नहीं है, ख्याल है ना, निमित्त होता कोई और है और हम किसी और को निमित्त मानकर, जैसे हम दुखी तो है अपने राग द्वेष के कारण, स्वयं दुखी है प्रत्येक जीव अपने राग द्वेष के कारण मानत कहेंगे, कुमार के औजारों को भी निमित्त कहेंगे, हरेक का परसेंटेज दे दो निमित्त रूप से, हम मानते ना ये हमने कार्य किया, ये पुस्तक देखो मैंने लिखा, अब मैंने लिखा तो ये हाथ को निमित्त रूप से लेना कि नहीं लेना, पेन को लेना कि नहीं लेना, अभी वो जो प्रिंट हुआ उसको लेना कि नहीं हुआ, कागज को निमित्त रूप लेना कि नहीं लेना, अब मैंने लिखा और घर में ही पड़ा रहा, फिर जो छपाई हुई उसको निमित्त लेना कि नहीं लेना, छपकर भी घर में पड़ा रहा, फिर किसी ने वो सबको बांट दी तो उसको निमित्त लेना कि नहीं लेना, हम सारा निमित्त, मैं निमित्त तो हूं ना, निमित्त तो हूं ना, इसके पीछे कर्ता बुद्धि छिपी है जो हमारे अभिप्राय में डीप डाउन है, हम निमित्त ही है, ऐसा कहें ना, निमित्त तो हूं ना, भार कहां पर है? निमित्त पर। हमें तो रियलिटी पहले पहचाननी है। निमित्त तो पूरे दुनिया को दिख रहा है और निमित्त से हम उसका उपचार से उसका हम कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं, ख्याल है ना, कि देखो इनके कारण हमारा ये कार्य हुआ, ऐसे कहने की पद्धति भी है। परंतु हमें तो रियलिटी पहचानना है और रियलिटी बोलने की जरूरत नहीं है, रियलिटी अपने श्रद्धा में ज्ञान में रखनी है। और बाहर लौकिक उपचार तो ऐसा ही होगा, निमित्त के द्वारा ही हुआ ऐसा हम कहेंगे भी, कहने में कोई हर्जा नहीं, किस अभिप्राय से कहते हो, कथन कथन में भी फेर है। जिसको बिलाड़ी है ना, बिल्ली अपने बच्चे को भी पकड़ती है दांत में और चूहे को भी पकड़ती है, पकड़ पकड़ में फेर है कि नहीं, हाँ? क्यों बे, देखा है ना कभी बिल्ली अपने बच्चे को, वो तो पलटाती रहती जगह जगह, आपने सुना भी होगा कहावत होती है, वो तो सात घर घूमती है, तो बच्चे को उठाकर दूसरे सेफ जगह रख देती है और वो चूहे को भी पकड़ती है, उसमें है कि नहीं डिफरेंस। वैसे ही अज्ञानी भी वही कथन करेगा, ज्ञानी भी वही कथन करेगा, कथन कथन अभिप्राय में फर्क है। आप कहेंगे, आप कहे वो सच्चा, हम कहे तो झूठा, अरे ऐसी बात नहीं है। यदि कथन सीधे अभिप्राय से हो तो आप भी सच हो, परंतु अपना अपना अभिप्राय तो टटे लो कि क्या हम किस अभिप्राय से ये कहेंगे, हमारा जोर कहां पर है, निमित्त पर है क्या द्रव्य की अपनी शक्ति पर है, ये हमें अपना अभिप्राय टटोलना है। क्योंकि जो कुछ परिवर्तन होना है अपने से अपने में होने वाला है, किसी को भी उपदेश के द्वारा दूसरे को पलटा नहीं सकता। कोई भी यहां आकर आपको सुनाकर आपका परिणमन हो जाए, ऐसी बात तीन काल में नहीं हो सकती है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन, प्रत्येक जन की जो ज्ञान की पर्याय उस द्रव्य के अपनी योग्यता से अपने में स्वयं के क्षेत्र में होगी। आप सबकी जितनी जो ज्ञान की पर्याय है वो सब अपने में कार्य कर रही, ज्ञान अपने में परिणमन हो रहा है, तो उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे निमित्त की, बिल्कुल निमित्त का नाम लेने की जरूरत नहीं है, कि निमित्त होता है और होता है तो यथा योग्य होता है। हमें रियलिटी देखनी है ना पहले में, पहले उसको स्वीकार करना है, फिर हम कहेंगे वो ज्ञान की अपेक्षा। तो यहाँ क्या लिखा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने वाले शास्त्र कथन पढ़कर, शास्त्र में भी होता है कि इसने कर्म को बांधा, इसने कर्म का क्षय किया, शास्त्र में ही ऐसा ही कथन होगा, इसको क्या कहते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध। कुम्हार हुआ निमित्त और घड़ा बना, इसको कहेंगे नैमित्तिक। निमित्त की अपेक्षा से कार्य को कहना है तो कहेंगे निमित्त नैमित्तिक। जैसे यहां अपनी ज्ञान की पर्याय चल रही सीधी और फिर उसमें एकदम हीनता हुई तो क्यों हुई, जैसे ऑपरेशन टेबल पर लेटा है पेशेंट और उसको एनेस्थेसिया दिया, अरे अभी तो चंगा बंगा था, बोल रहा था, अभी क्या हुआ इसको, बेहोश जैसा हो गया, तो कहें देखो एनेस्थेसिया ने काम किया कि नहीं, नहीं। उस जीव की ज्ञान की पर्याय स्वयं अपनी योग्यता से हुई उस समय वो, क्योंकि हमें तो बाहर दिखाई देता है ना। आप कहेंगे हम नहीं एनेस्थेसिया देंगे, ये आपको ऐसा ही बुद्धि हुई नहीं देने की, क्योंकि उस जीव की ऐसी योग्यता नहीं। हम उस एंगल से विचार करने की थोड़ी आदत डालेंगे तो ये बिल्कुल अपने को सरल लगेगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध हमेशा ही सहज होता है, उसको जुटाना नहीं पड़ता ना हटा सकते। जिस समय जो पर्याय जैसी होनी है वैसे होकर ही रहती है, वो द्रव्य के अपने निज शक्ति से होती है, उस समय उचित नियम निमित्त होता है। क्योंकि निमित्त हम उसी को कहेंगे जो अनुकूल है, और तभी कहेंगे जब कार्य हुआ है। यहां कार्य नहीं हुआ और हमने निमित्त जुटाए, ऐसा होता ही नहीं। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने वाले शास्त्र कथन पढ़कर उन दो द्रव्यों में, आगे क्या लिखा, कर्ता कर्म संबंध मानने रूप भ्रांति, भ्रांति यानी खोटी कल्पना। कर्ता कर्म का अर्थ है कर्ता यानी द्रव्य को हम कर्ता कहेंगे, कर्म यानी कार्य यानी पर्याय। कर्ता अपने पर्याय का कर्ता कौन है, तो अपना अपना द्रव्य, दूसरा द्रव्य उस पर्याय का कर्ता नहीं हो सकता। तो हमेशा कर्ता और कर्म संबंध एक द्रव्य में होता है और निमित्त और नैमित्तिक संबंध दो द्रव्य में होते हैं। हमें अभी शास्त्र पढ़ने की कला आनी चाहिए, जहां दो द्रव्यों का कथन है कि इसने इसका किया, तब समझना ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जहां कथन आएगा इस द्रव्य की ऐसी पर्याय उसकी स्वयं से हुई, तो कहना ये कर्ता कर्म संबंध है। फिर से, जो द्रव्य स्वयं परिणमन करता है उस द्रव्य को कर्ता कहते हैं, उसकी पर्याय को कर्म कहते हैं, कार्य कहते हैं। शास्त्र में दोनों प्रकार के कथन आते हैं। जब हम कहेंगे भगवान ने घाती कर्मों का नाश किया, या जीव ने मुनिराज ने घाती कर्मों का नाश किया, तब उनको केवल ज्ञान हुआ, ऐसा कथन सुनेंगे। दो द्रव्यों का कथन है, एक है द्रव्य जीव द्रव्य और एक है कर्म। जीव ने कर्म में कुछ किया, ऐसा कथन शास्त्र में ही आता है, तो उसमें क्या समझना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का कथन है, कथन में होता है। दो द्रव्यों का संबंध कथन में बताते हैं। जहां कहेंगे कि भगवान अपने में लीन हो गए मुनिराज और उन्होंने पूर्ण शुद्धि अवस्था प्रकट की, तो निश्चय का कथन, निश्चय का ने उसी द्रव्य का उसी पर्याय का करता है, इसे उसी द्रव्य को कहा ना, वो हो गया निश्चय कथन। दो द्रव्यों का मिलकर कथन किया, इसने इसका कुछ किया, उसको क्या कहेंगे, निमित्त नैमित्तिक कथन। ये शास्त्र पढ़ने की कला है, इससे हम सही अर्थ निकाल सकते हैं। शास्त्र में सब कुछ कहा हुआ है, परंतु मुनिराजों को इतना तो लिख दिया, और बार बार हर एक वाक्य के पीछे ऐसा नहीं लिखेंगे कि यह व्यवहार कथन है, निश्चय कथन है, यह हमको जानना है। जैसे लौकिक में तो हम बहुत चतुर हैं, कल बताया ना, दोपहर होती है तो हिता बेन पूछती है, बेन आप चाय की कॉफी, तो कोई पर्सन चाय कॉफी हो जाती है क्या, उसका अर्थ क्या, आप क्या लोगे, चाय लोगे कि कॉफी लोगे, तो उसका अर्थ हम बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। लौकिक में तो हम चतुर हैं, परंतु यहां ऐसी कोई बातें आती है तो हमें गफलत होती है। कल चाय की बरनी भी देखी थी कि नहीं, है आपके घर में, आज सुबह देख के आए चाय की बरनी, जिस बरनी में चाय रखी है उसको हम कहेंगे चाय की बरनी, वो बरनी चाय से तो नहीं बनी है। तो निश्चय कथन क्या होगा, प्लास्टिक की बरनी होगी, ग्लास की, कांच की होगी, आपके पास चांदी की होगी, फिर भी वो कुछ धातु की होगी, मटेरियल की होगी, परंतु उसको हम, उसमें कौन सी चीज रखी है उसकी अपेक्षा हम उसको कह देते हैं, इसको कहेंगे सही व्यवहार कथन, उपचार कथन, इसको कहते हैं व्यवहार कथन। तो हमारे में कोई भ्रांति है क्या नहीं है, इसको हमें ही चौकन्ना होकर सुनना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पंडित टोडरमल जी कहते हैं, अब ये जो वाक्य हम पढ़ रहे हैं वो तो यहां पर बिल्कुल अंकित कर देना अपने हृदय पर। हमारे जो विद्वान हमें सिखाते थे उन्होंने तो ऐसे पूरा लिखवा कर बोलते थे, अपने घरों में लिखवा देना। क्या है ये अनादि निधन वस्तुएं, ये कौन सी वस्तु के बारे में चल रही बात, हाँ रमेश भाई ना बोलना, वस्तुएं ने द्रव्य, कैसे द्रव्य, अनादि निधन, अनादि अनिधन, अन आदि, जिसको आदि नहीं है, कोई बिगिनिंग नहीं है, क्योंकि सभी द्रव्य अनादि से है। अनिधन है, किसी का नाश नहीं होता, जिसको हम अनादि अनंत कहते हैं, अनादि से है और अनंत काल रहने वाले हैं, ऐसी वस्तुएं, ये किस वस्तु की बात चल रही है, जीव की के पुद्गल की के धर्म धर्म की, हाँ जीव की। बहन जी आप क्या कहते हैं, इस विश्व में जीव भी है और मैटर भी है, बहुत सारे द्रव्य, कौन कौन से द्रव्य अनादि से और कौन कौन से अनंत काल तक रहेंगे, हाँ लता बेन बोलो, हाँ लता बेन बोलने वाले, हाँ बोलो बोलो, यू हैव टू, ये निर्णय आपको करना है। जीव की बात है क्या, पुद्गल की है क्या, धर्म अधर्म की है, हाँ हाँ आप बहन कुछ बोल रही थी पीछे आप, हाँ बोलिए, जीव की बात है, हाँ आप क्या कहते हैं, जीव की, हाँ बोलियो, हाँ बनने यानी छह द्रव्य, क्योंकि द्रव्य हम किसको कहते हैं, छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यदि हमने जीव को ही अनादि निधन माना और अन्य द्रव्यों को नाशवान माना तो क्या होगा, विश्व का नाश हो जाएगा, क्योंकि विश्व कहते ही उसे को, जहां छह द्रव्य हमेशा ही रहते हैं। और हमने देखा था द्रव्य का काल कितना है, अनादि अनंत, कौन से द्रव्य का, प्रत्येक द्रव्य का, पुद्गल भी अनादि से है, वो शरीर रूप नहीं, उसके पर्याय बदलेगी, पर्याय बदलेगी परंतु द्रव्य हमेशा रहेगा। आप कहते ना मैटर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। ये उन्होंने तो मात्र मैटर के बारे में, इन्हें पुद्गल के बारे में बताया साइंटिस्ट ने, वो बात छह द्रव्यों के बारे में लागू होती है कि सब्सटेंसेस कौन कौन से, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल आर ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दे ओनली चेंज देयर फॉर्म्स। तो अनादि निधन वस्तुएं, सभी वस्तुएं हो, सभी द्रव्य कैसे भिन्न भिन्न, भिन्न क्यों कहा, क्यों नहीं, उनका स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव अलग अलग, जिसको कहेंगे स्वचतुष्टय। तो प्रत्येक द्रव्य भिन्न है क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व भिन्न है। यदि हम भिन्न नहीं मानेंगे तो दो द्रव्य मिलकर एक हो जाएगा, पांच छह द्रव्य मिलकर एक हो जाएंगे, छह मिलकर एक हो जाएगा तो एक हो जाएगा, सबका नाश हो जाएगा। एक एक शब्द में कितना, एक वाक्य पर एक घंटा बोलने जितना मैटर है इसमें। अनिधन, निधन यानी नाश, हम कहें इसका निधन हुआ यानी मर गया। अनिधन, अ शब्द दोनों के लिए कॉमन है, अनादि अनिधन, उसको कहेंगे अनादि निधन। भिन्न भिन्न, प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व भिन्न भिन्न है। देखो ऐसी भी मान्यता आपने सुनी होगी, अन्यमति मानते हैं कि कोई एक ईश्वर है और हम सारे अनंत उसमें विलीन हो जाते, अनंत में विलीन हो जाना मोक्ष प्राप्त करने में क्या है, कोई एक महाज्योत है उसमें अपनी ज्योत मिला देना यानी अपना अस्तित्व खो देना, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व अनादि से है, भिन्न भिन्न है, अनंत काल तक रहेगा, भिन्न भिन्न ही रहेगा। हम यहाँ एक है और यहाँ अनंत पुद्गल है जो कर्म रूप भी है शरीर रूप भी है, फिर भी हमारा प्रत्येक का अस्तित्व भिन्न भिन्न है। इस शरीर का एक एक परमाणु अभी जुड़ी हुई अवस्था में रहते हुए भी भिन्न भिन्न है, क्योंकि भिन्न होकर उसकी अपनी अवस्था बदल सकती है। अभी जो कोई परमाणु अपने शरीर रूप से है, यहां से छूटकर कर्म रूप हो जाएगा, भाषा रूप हो जाएगा, अन्य पद्गल रूप हो जाएगा, पहाड़ रूप हो जाएगा, या कोई सर्प रूप हो जाएगा, विष रूप हो जाएगा, कुछ भी हो सकते उसके परिणाम। तो कहते अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, पर्याय बदलती है ना उसकी, द्रव्य तो कायम है। देखो कैलिडोस्कोप देखा आपने, स्कूल में हम बनाते थे ऐसे ट्रायंगुलर, तीन ऐसे कांच लेते थे और ऐसे जोड़ते थे और अंदर वो बंगड़ी की कांच की टुकड़े, हाँ देखा है ना आपने, वो डालते थे और ऐसे घुमाते थे, तो एक बार वो अंदर फिक्स करने के बाद अंदर बंगड़ी की उतने के उतने पीसेस रहते कि बढ़ जाते कम हो जाते हैं, उतनी जब घुमाते तो क्या अलग अलग फिगर्स दिखती है। तो वो कांच के टुकड़े उतने रहते हैं और उसकी पर्याय वो बदलती है बदलती है बदलती है, तो वो तो उतने की उतनी रहेगी। ऐसे ही यहां भी अलग अलग पुद्गलों के संयोग से चीजें बदलती रहती है, शरीरों के भी संयोग होते रहते हैं, अलग अलग संयोग होते रहते हैं। हमें तो लगता है देखो कितनी नई चीजें उत्पन्न, कुछ नहीं उत्पन्न हुआ है, वस्तुएं जो जो एलिमेंट्स है जो कोई द्रव्य है वो तो अनादि से उतने ही है, अनंत काल तक उतने ही रहने वाले। तो अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती। अपनी मर्यादा का क्या अर्थ है, जीव है वो ज्ञान दर्शन रूप परिणमित होगा, वो कभी स्पर्श रसगंध रूप नहीं परिणमित होगा। ये बुखार आया ना, किसको आया बुखार, यानी स्पर्श रूप परिणमित हुआ, गर्म हुआ स्पर्श, किसका हुआ, पुद्गल का कि जीव का, तो वो जीव कभी ठंडा गर्म नहीं होगा। उसकी मर्यादा क्या है, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख इत्यादि है, वो उस रूप परिणमना वो जीव की मर्यादा। तो जीव हो या पुद्गल हो अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित होते हैं, वो अपने अपने रूप से रहते हैं, पररूप नहीं होते, अपनी मर्यादा अपना क्षेत्र छोड़कर कभी बाहर नहीं जाते। जीव अपना क्षेत्र छोड़कर थोड़ा शरीर रूप पुद्गल में घुस गया हो, अचेतन हुआ हो, मराठी में कहावत है, हाँ वो भाई आए ना हमारे अभी बताएंगे, डवड़ा शेजारी बांधला पौड़ा, आगे क्या वान नहीं पन गुण लगला, है ना, गुजराती में पन है ऐसा कुछ। ये दो बैल होते हैं ना, एक सफेद कलर का और एक थोड़ा लाल कलर का, तो एक साथ बांधा दिया उनको, तो एक दूसरे का वर्ण तो नहीं बदलता, उनके दी इसका गुण इसको लग गया। ऐसा द्रव्य में कोई गुण इधर का उधर नहीं होता है, जीव द्रव्य का जानने वाला गुण चेंज होकर शरीर में चला जाए, थोड़ा ब्रेन में चला जाए, ऐसा नहीं होता। और शरीर का स्पर्श रस गंध रूप जीव में आ जाए ऐसी बात नहीं हो सकती। तो अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, उनका प्रत्येक परिणमन स्वयं से स्वयं में होता है, कोई किसी को परिणमाता नहीं है। निमित्त तो होता है कि नहीं होता, अपने में परिणमन करता है, किसी अन्य चीज को अनुकूल लगता है तो उनको उसको निमित्त नाम डिक्लेयर कर देते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वयं का परिणमन करता है, प्रत्येक द्रव्य उपादान से स्वयं का कार्य करता है, बस दैट्स ऑल। उसी को हम किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा उसको निमित्त नाम देते हैं, लेबल देते हैं। कोई भी द्रव्य पुरुषत्व के बिना बैठा ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अपना परिणमन कर रहा है, कब, हर समय। तो उसको फुर्सत है क्या कि अपना भी परिणमन करे और पर का भी, मां करती ना इता बहन, अपना भी करती है और बच्चों का भी करती है। वैसे द्रव्य अपना भी परिणमन करता है, पर द्रव्य का भी करता है, ऐसा होगा होगा नहीं। दूसरा द्रव्य कहेंगे जरा आराम करते जाओ, आप सुन लो, ऐसा कभी नहीं होता। तो अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, यानी है लिखा ना अनेक वचन, कोई किसी को परिणमाता नहीं है। दूसरे को परिणमित कराने का भाव, भाव यानी मैं दूसरे को परिणमित करा सकता हूं, ऐसी जो मान्यता है वो निगोध है। निगोध है ने? निगोध का कारण है वो रावण है, उसने तो मैं परस्त्री सेवन नहीं करूंगा ऐसा नेम लिया था मुनिराज के सामने, फिर भी सीता पर बहुत प्रेम हुआ उसको, रींझ गया, तो उसने उसको परिणमाने का भाव किया कि तू मेरे से शादी कर। उसके पीछे था कि तू मेरी स्वस्त्री, क्योंकि उसने परस्त्री का त्याग किया था तो उसको उस जमाने में तो बहुत सारी शादियां होती थी, है ना। तो ये मंदोदरी उसकी पटरानी भी वो सीता के पीछे बोल रही थी कि तू जरा मान ले इसकी यानी इसकी रानी हो जा। उसको तो कहा मैं तेरे को पटरानी बना दूंगा, फिर भी उसको परिणमित कराने का जो भाव है कहां गया वो, कौन तीसरे नरक में गया। अच्छा, और हम कितने वस्तुओं को परिणमित कराने का भाव करते, अनंत वस्तुएं मानते हैं ना। देखो ये परिणमन करने का भाव आना अलग बात है, किसी को बचाने का भाव आना अलग बात है, किसी को हेल्प करने का भाव आना अलग बात है, और ये मैं कर सकता हूं ये मान्यता अलग बात है। ये दो लेवल पर स्वीकार करना, एक श्रद्धा के लेवल पर अभिप्राय के, अभिप्राय मिट जाने पर भी भाव कुछ काल तक आता रहता है, वो उपयोग भी होगा। देखो हमने यहाँ पंखे चलते हैं और हमने बटन ऑफ कर दिया, पंखा बंद हो रहा है क्या, घूम रहा है क्या, क्या हो रहा है, घूमता है क्या, बंद हो गया, थोड़ी देर घूमेगा परंतु अभी बंद होने के लिए घूम रहा है, ख्याल है ना। ऐसे वो मान्यता चली गई बचाने का, मैं किसी को बचा नहीं सकता ये मान्यता हो गई उसकी, फिर भी बचाने का भाव आएगा, अभी चौथे में भी आएगा, पांचवे में भी आएगा, मुनिराजों को भी उपदेश करने का भाव आएगा कि नहीं आएगा, उनको तो मालूम है कि ये तो भवसागर से बचाने का भाव आएगा, उसको ऐसा भाव नहीं आएगा मुनियों को कि मैं इसका खाना खिला दूं और पानी पिला दूं, उनको भवसागर में से बचाने के लिए उपदेश का भाव आएगा। तो बुद्धि यानी बचाने की बुद्धि वो मिथ्या मान्यता, और बचाने का भाव ये शुभराव वो आएगा, और क्रम से उसका भी नाश होगा। तो ये तो निगोध है का अर्थ है, निगोध में जाने की तैयारी है ना। अब अपना समय हो चुका है, हम यही रुकते हैं और फिर वो प्राण वाली बात, हाँ फिर से
नियम लेने के बाद
नहीं, देखो हम रावण की बात कर रहे थे, उसने सीता को परिणमाने का भाव किया कि जैसे रावण पर प्रेम करती वैसे मेरे पर कर, मेरे से शादी कर, वो नहीं मानी थी, यानी उसको सीता को पलटाने का भाव बारंबार, मैं पलटा सकता हूं, मैं इतना त्रिखंडी हूं, अभिमान था। उसके सारे सैनियों ने, उसके भाइयों ने, उसके रानी ने, सबने समझाया था कि तू तेरा हट छोड़ दे, परंतु वो उसी बात पर अड़ा रहा, उसका फल तो मालूम है हमें। हाँ, तो यहां तो बात चल रही है ये परको मैं परिणमा सकता हूं, ये बुद्धि, ये मिथ्या मान्यता छोड़ने की बात है। हम तो पहले में पहले क्रिया नहीं, फिर मैं नहीं किसी को बचाऊंगा, ये बात नहीं होती। क्रिया के लिए यहाँ कोई उपदेश, पहले में पहले चेंज जो होगी तो मान्यता होगी, श्रद्धा जिसको कहते हैं, अभिप्राय जिसको कहते हैं। अभिप्राय सुधरने पर भी शुभ भाव आएंगे हो, उसका निषेध है ही नहीं कहीं पर, मान्यता का निषेध है। उसकी और चर्चा करेंगे, अपने समय हो चुका है अभी। बोलो 2400 भगवान की जय।